नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय हम आपको बता चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें भी खुल चुकी हैं। आज का विषय है, तनख्वाह बढ़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारी नाराज क्यों हैं। नंबर एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, नंबर है 1811-7000 और 1811-7001। लेकिन इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, दो बड़ी खबरों का जिक्र करना जरूरी है। पहली खबर बांग्लादेश से। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि कल रात ढाका के जिस कैफे में चरमपंथियों ने हमला किया था, उस हमले में 20 लोग मारे गए हैं, ये सभी विदेशी नागरिक हैं। सरकार का ये भी कहना है कि 6 हमलावर मारे गए, जबकि एक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इस हमले की जिम्मेदारी कथित रूप से इस्लामिक स्टेट ने ली है। कैफे से 13 लोगों को बचाया गया। ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ, मैंने पूछा अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश में वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा से।
जो लोग ऑपरेशन में गए थे, ये आर्मी कमांडो, वो लोग डिटेल्स में कुछ अभी भी नहीं बताया, लेकिन एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। उसमें जैसे कि 7:30 बजे करीब सुबह उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और करीब 10 से 15 मिनट तक ये ऑपरेशन था। उनका कहना ये है कि 7 आतंकवादी में से 6 मारे गए, एक मुल्क के हिफाजत में है, और अंदर वो 20 फॉरेनर्स आगे के राशि को मार दिया गया था, ये उनके ब्रीफ में आया है।
सैफुल साहब, ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है इस समय, क्या कुछ जो जिन लोगों ने अटैक किया उनके बारे में कुछ जांच पड़ताल हो रही है?
जो 6 आतंकवादी हलाक हुए उनको, उनका भी कोई आइडेंटिटी हम लोग के पास ये नहीं किया अभी तक वो आदमी, और जो अरेस्टेड हुए उनका भी कोई ट्रेस अभी हम लोग को मालूम नहीं है। जब तक उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चलता तब तक शायद हम लोग कुछ नहीं बोलते, मीडिया के पास कुछ नहीं आएगा तब तक।
ऑपरेशन के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी टेलीविजन पर लोगों को संबोधित किया, और कुल मिलाकर इस समय बांग्लादेश में चल क्या रहा है?
बांग्लादेश में अभी बहुत ही खौफ फैला हुआ है, और ये ईद जो जाएगा, ये ईद में ज्यादा कहीं जमात होने का इम्कान नहीं है मेरे ख्याल, इसलिए कि ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं।
जिस इलाके में ये घटना हुई उस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है?
जो इलाके में ये वाकया हुआ, ये इलाका पहले से बहुत ही सेफ और गार्डेड कहा जाता था, इसलिए कि ये पूरा एरिया में करीब 5 स्क्वायर या 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कम से कम 6-7 हजार CCTV लगा हुआ है। जो सवाल अभी दिमाग में आदमी क्या आ रहा है कि ये इतने सिक्योरिटी के अंदर भी ये लोग ऐसे आर्म लेके कैसे घुसे, नंबर वन। नंबर टू, ये इन लोग का जो सुसाइडल स्क्वाड है, इन लोग का ये और बढ़ जाएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा डर का बात है अभी।
बाकी किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं या फिर लोग क्या कह रहे हैं?
लोग का कहना तो अभी एकदम चुप है, नॉर्मल होना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये ऐसा वो लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है।
ये थे बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा, जो कि बता रहे थे कि ऑपरेशन किस तरह से पूरा हुआ। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम विस्तार से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मृतकों की तादाद बढ़कर 15 हो चुकी है, 21 लोग लापता हैं। सीधे कार्यक्रम में संक्षिप्त जानकारी के लिए शिव जोशी को शामिल करते हैं। शिव, सबसे पहले तो ये बताइए कि हादसा तो हो गया है, आपदा प्रबंधन की टीमें या सरकार क्या कर रही हैं?
देखिए मोहनलाल जी, आपदा प्रबंधन की जहां तक बात है, इन प्रभावित इलाकों में जिनमें से कि अधिकांश इलाके दुर्गम थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने में आपदा राहत टीमों को काफी वक्त लगा। ये कह सकते हैं करीब 24 से 36 घंटों का वक्त उन्हें लगा है। सबसे पहले पहुंचने वालों में असम राइफल्स के जवान रहे हैं और ITBP के जवान वहां पर रहे हैं, और वहां पर उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन हेलो
जी, हाँ जी, हम सुन रहे हैं
जी। जी, लेकिन लेकिन समस्या जो है वो बिजली आपूर्ति ठप है, बीएसएनएल फोन की सेवाएं ठप है, और इसके अलावा कई तरह के जो रास्ते हैं जैसे कि लिंक रोड वगैरह हैं वो सब वहां पर बंद पड़ी हुई है मोहनलाल जी, इसलिए राहत का जो काम है उसमें काफी मुश्किल आ रही है।
और निश्चित तौर पर जैसे जैसे रात गहराएगी तो ये समस्या और बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जोशी कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए, अगले कार्यक्रम में आपकी आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। और अब हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं, इंडिया बोल का विषय, और जो विषय है कि तनख्वाह बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी नाराज क्यों हैं। मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं हमारे अतिथि हैं बीसी शर्मा, जो कि उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन में महासचिव हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, वेतन अगर 23% बढ़ा है तो कम तो नहीं है?
वेतन 23%
23.5
नो, दो तरह की स्टेटमेंट है। वित्त मंत्री 23% कह रहे हैं और जो चेयरमैन था वो 14.29 कह रहा है, लेकिन जो वेतन है वो एक्चुअली 0.32 बढ़ा है। उसका रीज़न है कि अभी तक हमें 125% महंगाई भत्ता मिलता है जो हमारा मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज जो है 7,000 है
जी,
7,000 के मुताबिक हमें जो आज मिल रहा है उसके अनुसार हमें कोई ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। उसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे, हमें जो मिनिमम वेज है 1800 ग्रेड पे है, तो उसमें 16,080 रुपये हमें मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन में जनवरी 2016 में, अभी जब सेवन्थ पे कमीशन आ जाएगा तो हमारी पे जो पॉकेट में जाने की है, जो डिडक्शन इन्होंने शुरू बताई है कि जीआईएस जिसको बीमा बोलते हैं 1500 से 2500 तक, तो हमारी मिनिमम पे में माइनस 540 रुपये हो जाएंगे।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके वेतन में, लोगों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है?
आंकड़ों का माया जाल है। और दूसरा, केंद्रीय कर्मचारी जो वेतन जो सातवां बैठा था,
हाँ,
10 साल के पश्चात बैठा है, और उस 10 साल के अंदर महंगाई का क्या रुख हुआ है उसको देखते हुए इनको जो वेतन है सिक्स्थ पे कमीशन में 54% बढ़ा था।
और तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक बार मान लीजिए कि 50% वेतन बढ़ गया तो आप सरकार से ये उम्मीद करें कि हर वेतन आयोग में आपको उतना ही भरपूर झोलियां भर के मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है?
नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री,
हाँ,
उसका बास्केट का रेट है, उसका बास्केट का जो रेट है उसके मुताबिक न्यूनतम वेतन को फिक्स करने का गवर्नमेंट ने, डॉक्टर रिकॉर्ड की एक कमेटी थी उसने एक फार्मूला बनाया हुआ है
जी,
जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, आटा है, गेहूं है, दाल है, चावल है, घी है, उसका एक फिक्स रेट है उस आधार पे। और 15वीं ILC इंटरनेशनल लेबर कमेटी ने एक फार्मूला बनाया हुआ है, उसके मुताबिक हमारा न्यूनतम वेतन केंद्रीय कर्मचारियों का बनता है,
जो कि आपको नहीं मिल रहा है।
वो आपको नहीं मिल रहा है
जी,
हमने उसकी पूरी कैलकुलेशन करके उसको अगर दिया तो 3.27 का मल्टीप्लाई फैक्टर होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने 2.57 का मल्टीप्लाई फैक्टर दिया, जबकि ऑलरेडी हम 2.25 ले रहे हैं।
हमारे श्रोताओं को ये सब आंकड़े ज़्यादा समझ में नहीं आते, और रेडियो पर सुनने में वैसे भी दशमलव का आंकड़ा 3% 2% समझ में नहीं आता है। मैं कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी जागर बेडर से बोल रहा हूँ।
जी मोहम्मद शफी साहब, कार्यक्रम में स्वागत है, अपनी बात रखें आप।
सर सबसे पहले मैं आपको ईद मुबारक देता हूँ और जनाब नरेंद्र मोदी साहब को भी ईद मुबारक देता हूँ
जी।
सर मौजूदा सरकार के जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है ये एक मजाक है सर।
हाँ हाँ,
इतनी महंगाई के बावजूद ये फैसला बिल्कुल नामंजूर है। जो मरकज के लोग जो नौकरी करते हैं उनको बिल्कुल ये जो है ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये तो एक मजाक है। जबकि पहली सरकारों ने पहले 54% दिया था, फिर 34% दिया था, फिर इन्होंने 23% दिया था, और महंगाई की दर जो है वो कितनी जो है दूर जा रही है। एक एक मुलाजम के घर के 10-10 आदमी है, वो भूखे मरे या रोटी खाएं या क्या करेंगे। फिर उसके बाद मेरी सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, मरकज में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं बेचारे, आपको आप देख आप हम देखते हैं सिक्योरिटी फोर्स, हम भी फोर्सेस में रहे हैं, वो पहाड़ों पर बर्फ में अपनी जानों की कुर्बानियां देश के लिए देते हैं, हमारे लिए देते हैं, देश का रखवाली करते हैं, लेकिन उस सिपाही की तनख्वाह जो है सिर्फ 15 या 18 हज़ार है, क्या उसके 10-5-7 आदमी माँ बाप जो है वो पल सकता है? ये सरासर नाइंसाफी है
जी,
मेरी गवर्नमेंट से सब रिक्वेस्ट है कि इस ये जो पे कमीशन है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लिहाजा
जी जी आप भी सरकार के इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं और हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो भी खुश नहीं हैं। एक श्रोता को और शामिल करते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप?
मैं संदीप पाठक बोल रहा हूं, गोपालगंज बिहार से।
हां संदीप जी, अपनी राय रखें आप।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो वेतन बढ़ी है सातवें वेतन भत्ता के अनुसार, वो मेरे हिसाब से जायज है और सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि 1959 के बाद से अभी तक जो वेतन आयोग ने वेतन बढ़ाए हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के करीब 225 गुना वृद्धि हुई है उनके वेतन आयोग वेतन में।
हाँ।
और मैं बता दूं कि 1970 के अगर उच्च पदस्थ जो अधिकारी थे उनके अनुसार उनकी अगर उस समय आय थी 80 रुपए तो इस समय करीब उनकी आय 18,000 रुपए है, और उसे अगर 1970 से उसी समय से हम लें तो आज तक 70% केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी है। अगर उसी चीज को हम एक किसानों के लिए बात से करें, मछुआरों की बात से करें या कुछ मजदूरों की बात से करें तो उनकी आय में महज 20% की वृद्धि है, तो ये बात एक अच्छी नहीं हो सकती कि इतना बड़ा अगर उतार चढ़ाव होता है देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के आय में तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये खाई बन जाएगा। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, 1 करोड़ लोगों के इस वेतन आयोग से करीब 1 करोड़ लोगों को मतलब की फायदा होगा। इस देश में 90 करोड़ लोग जो है वो वर्क करते हैं असंगठित क्षेत्रों में, अगर उनके वेतन के बारे में कुछ ना सोचा जाए तो मेरे देखने से फिर ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि आने वाले समय में फिर उसको संभाल पाना देश के सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा।
जी संदीप जी आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए क्योंकि सवाल जो है वो अब सीधा शर्मा जी के पास आ रहा है। सर आप इनकी बात सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि बहुत जायज़ है, और मेरा भी एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का जिक्र करते हैं तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके न्यूनतम वेतन की बात क्यों नहीं करते? उनको पैसा कहाँ से आएगा? और सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से अगर आप आज की तारीख में कंपैरिजन करें तो वहाँ तो वेतन है ही नहीं। आप जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको मिनिमम आज आप 18,000 वेतन दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो एक गार्ड की नौकरी कर रहा है वो तो 6,000 रुपये में कर रहा है, तो अगर आप उसके लिहाज से देखें तो आपकी बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा है।
नहीं, ये बात प्राइवेट को गवर्नमेंट से कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है।
नहीं, क्यों गलत? कैसे नहीं, गलत हुआ?
ऐसा
मैं
है,
एक और एग्जांपल दे रहा हूँ शर्मा जी, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग जो नौकरी करना चाहते हैं वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ चाहिए, मान लीजिए अस्पताल चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो निजी क्षेत्र चाहिए। खुद नौकरी करना चाहेंगे सरकारी, लेकिन सुविधाएँ निजी क्षेत्र की चाहिए।
नहीं, ऐसा है, रेलवे एक डिपार्टमेंट, मैं रेलवे से हूँ।
हाँ,
रेलवे के अंदर रेलवे
जी जी
रेलवे खुद अर्न करती है। 1921 से लेके आज तक रेलवे का बजट खुद पेश होता है, रेलवे अर्न करके अपने कर्मचारियों का वेतन निकालती है और उसमें सरकार की भी भागीदारी करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पिछले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया भारतीय रेलवे डिविडेंड भारत सरकार को दे चुकी है। वेयर एज आज भी 91 ऐसी लाइनें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ वो भी रिटर्न नहीं होता। हम मिनिमम पैसे के अंदर लोगों को सुविधाजनक यात्रा कराते हैं। हमारा जो रेलवे है 24 आवर चलता है, हमारी ड्यूटी ऐसी है। फोर्स डिफेंस जो है,
रेलवे में निजी क्षेत्र नहीं आया है, रेलवे में निजी क्षेत्र नहीं है,
नहीं है, रेलवे में भी रेलवे 40% जो है निजी क्षेत्र हो चुका है।
अच्छा, अब आप, मैं आपको सीधे यहीं पर एक उदाहरण देता हूं कि निजी क्षेत्र जो रेलवे में है वो कौन सा निजी क्षेत्र है? आपके आज जो सफाई कर्मचारी हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के, निजी क्षेत्र की कंपनी के हैं, और जो रेलवे का आज जो सफाई कर्मचारी है वो 18,000 वेतन पाएगा और जो निजी क्षेत्र की कंपनी का एक ठेकेदार के थ्रू आ रहा है उसको 6,000 रुपए मिलेंगे, उनके वेतन पे क्यों बात नहीं हो रही? उनके असंगठित क्षेत्रों के जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके वेतन पे क्यों बात?
उनके वेतन पे भी मैं जो है सीएलसी का मेंबर हूं
जी,
श्रमिक बोर्ड में।
हाँ हाँ,
उनके वेतन पे भी जो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को देती है मिनिमम वे जो फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट उस कंट्रेक्टर से टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर उसकी वेज देने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट इसको फिक्स करे।
मतलब इस जैसे आप बात करेंगे
जिसमें, हाँ बिल्कुल, हमारा जो है गवर्नमेंट ने खुद फिक्स किया है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं।
ये आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। माना, लेकिन उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम जो है वो हमारे श्रोताओं का भी है। संदीप पाठक हमारे साथ लाइन पे बने हुए, लेकिन एक और श्रोता सीताराम राय जुड़ गए हैं। सीताराम जी का फोन कट गया। संदीप पाठक जी वापस आ गया आपके पास में। संदीप पाठक जी, आप मेरे तर्कों से सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं और जो मैं सवाल कर रहा हूं शर्मा जी से?
जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में 90% जो वर्कर हैं, 90 करोड़ लोग मतलब जो है वो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जो भारत में बनाए हुए चीजों को दूसरे देशों में उनके बनाए हुए चीज निर्यात होते हैं, अगर उनके लिए कुछ ना किया जाए। और एक बात मैं अभी बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये 1 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, इनके पास जो टैक्स आता है रियली में, कमाई जो होती है, इन असंगठित क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ही दिया हुआ टैक्स होता है, वो कहीं ना कहीं बोझ हमारे ऊपर ही बढ़ने वाला
है। वो पाठक जी, वो अप्रत्यक्ष कर है, वो अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि वो तो बेचारे कर के दायरे में ही नहीं आते पाठक जी।
हाँ, मैं वैसे तो मैं बता रहा हूँ 3% लोग जो है वो कर देते हैं, टैक्स देते हैं। मैं लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये मान ले कि अभी ये जब इन लोग का पैसा बढ़ेगा तो ये लोग कुछ चीजें से 2-व्हीलर 4-व्हीलर और कुछ ऐसी फ्रिज एसी तमाम तरह की चीजें ये लोग खरीदेंगे, पहले से इनकी प्लान होंगे सरकारी लोग के। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति है, अब इतने महंगे हो जाएंगे ये सारी चीजें कि गरीब व्यक्ति अभी इनकी पहुंच से जो थोड़ी बहुत पहुंच के करीब भी है कि वो 2-व्हीलर खरीद सके, अब शायद वो नहीं खरीद पाएगा।
जी जी, आपके पास बने रहिए, एक तर्क और हम लेके आएंगे कार्यक्रम। एक श्रोता को हम शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
नीतीश कुमार यादव बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार यादव भाई, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
दुलम चौक भोजपुर बिहार से बोल रहे हैं।
बिहार से बोल रहे हैं जी, अपनी बात रखें आप।
जी, 7वां वेतन आयोग जो है,
हाँ,
यह हमारे देश भारत के गरीबों और अमीरों में बहुत खाई कर देगा।
हाँ हाँ, कैसे कर देगा?
क्योंकि एक तरफ जहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना वृद्धि होगी,
हाँ हाँ,
वहीं पर किसानों की आय बढ़ने के बजाय घट रही है।
हाँ,
क्योंकि आजकल जो कृषि में लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जबकि अनाजों की कीमत घट रही है। तो बाजार की जो वस्तुएं होगी वो तो अमीर लोग मतलब खरीद लेंगे, लेकिन गरीबों के बस की बात नहीं रह जाएगी।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीसी शर्मा जी, इनकी बात आपने सुनी। ये कह रहे हैं कि भाई जो मजदूर है या फिर जो बेचारा किसान है उसकी आय तो घट रही है, एक तरफ आय घट रही है और एक तरफ सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आय बढ़ रही है। लेकिन साथ में ये भी एक तथ्य है कि 3% जो हिंदुस्तान की सरकार को जो कर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी ही देते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सरकारी कर्मचारियों पर कर की मार सबसे ज़्यादा है, उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होता।
देखिए, एक तरफ सरकारी कर्मचारी हैं जो 30 दिन काम करने के बाद अपनी उसकी मजदूरी लेता है,
ठीक है।
अब ये पाठक जी हो या ये हो, इनको ये सोचना चाहिए, ये केंद्रीय कर्मचारी को बात है, जो 0.6% आज भारत सरकार भारत के अंदर 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं,
94% असंगठित है।
हाँ, लेकिन इनको जिस तरफ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो इस देश को चलाने वाले हैं आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी, वो उनके मेंबर पार्लियामेंट वो भी एक सरकार के दायरे के आते हैं, सैलरी लेते हैं, उनकी जो सैलरी है अभी तक 28 बार उसके अमेंडमेंट इन्होंने की है, 2010 के बाद जो है ये 16,000 लेते थे, आज 50,000 रुपया ले रहे हैं
इनके भत्ते अलग,
और इनके भत्ते अलग। एक मेंबर पार्लियामेंट 35 लाख का पड़ता है, एक मेंबर पार्लियामेंट 35 सारे पर्क्स को जोड़ ले, और इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस हुई, 40 साल के बाद पेंशन मिलती है जो लास्ट पे का 50%।
अब तो पेंशन का मामला ही खत्म हो गया ना?
नहीं, मैं दो तरह के आदमी हो गए।
हाँ, हाँ।
इस देश ने, सरकारों ने दो तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी कर दिए।
अब तो अपना पैसा जो आप बचाएंगे वही आपकी बात
नहीं,
पेंशन
एक जो पुराने आदमी है जो पहले के अपॉइंटी हैं 2004 से, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, जो 4 के बाद के हैं उनको नई पेंशन मिलेगी। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि टैक्स की बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ,
टैक्स की बात कर रहे हैं।
हाँ,
सरकारी कर्मचारी हर फरवरी के अंदर चार महीने की तीन महीने की टैक्स में चली जाती है
जी।
मेंबर पार्लियामेंट जो सारे भत्ते डाल के पर 16,81,000 रुपया ले जाता है वो सारा टैक्स फ्री है, वो भी सरकारी सैलरी लेता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो पब्लिक के सेवक की बात करते हैं, उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर कंटीन खोली हो या 30 रुपए में खाना मिलता है।
यहाँ तो आप सीधे मतलब सांसदों की बात कर रहे हैं, कार्यक्रम में एक श्रोता को हम मैं शामिल कर रहा हूँ जी। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नाम बताएं।
जी मैं ज्ञान प्रकाश राज बोल रहा हूँ, संत कबीर नगर जिले से।
जी ज्ञान प्रकाश जी, कबीर नगर से बोल रहे हैं आप? जी अपनी बात रखे।
जी मैं यह बात रख रहा हूँ कि ये जो महंगाई 7वां वेतन आयोग की बात हो रही है
जी,
इसमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई और वेतन जब 4,000 से 8,000 हो गया, 8,000 वाले 16,000 हो गए, बड़ा खुश हुए और महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी, तब तो त्राही त्राही मच गई। तो जो भी भाजपा गवर्नमेंट बढ़ा रही है इसमें वेतन में बढ़ोतरी कर रही है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। तो इस बात को सोचना चाहिए ना कि व्यक्तिगत लाभ देखना चाहिए कि मेरा 20,000 से 40,000 रुपए हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, और महंगाई भी जब दुगना बढ़ती है तो उस पर कोई विचार नहीं करता है, सीधा सीधा तर्क यही है
जी
यही सोचना चाहिए। और गरीबों को भी देखना चाहिए, देखिए दाल जो है 40 रुपए और आज 180 रुपए तक पहुंच गई है, तो उस पर कोई नहीं सोचता है, सिर्फ वेतन 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 की बात लोग करते हैं। तो यही साफ साफ बात है, जो भी बढ़ा है वो अभी कई लोगों के सोचने के बाद बढ़ा है, लेकिन वहाँ तर्क नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि कितने रुपए मेरी कमाई हुई, कितना आ रहा
जी है। जी ज्ञान प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो 7वां वेतन आयोग आ गया, अब तो भाई जो उच्चस्थ वर्ग है उसकी तनख्वाहें तो 2.5 लाख तक पहुंच गई। अगर मैं ये कहूं कि इसको ज़रा निजी क्षेत्र से तुलना कर लीजिए, जो हमारे आज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो CEOs होते हैं, वहां पर अपर ग्रेड में तो अच्छी तनख्वाहें हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जो निचला कर्मचारी है, निचले वर्ग का कर्मचारी, उसकी तनख्वाहें निजी क्षेत्रों के मुकाबले कई गुनी हैं, वो पैरिटी कैसे आएगी?
देखिए वो निजी क्षेत्र का,
और हर जगह सरकार भी क्या कर रही है, सरकार हर जगह तो निजी ठेका दे रही है। निजी ठेका जिस कंपनी को जाता है वो भी उन लोगों को लाता है और न्यूनतम मजदूरी भी ना देते हुए भी काम करवाता है।
तो ये सरकार की कमी है, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का कोई रोल नहीं है। जो हमारा कोई भी श्रमिक है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उनका न्यूनतम वेतन का तरीका जो है, न्यूनतम वेतन जो है उसका फिक्स होना चाहिए, उनको भी केंद्रीय ऑर्गेनाइज सेक्टर के बराबर मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कंपनी जो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो रेट फिक्स करते हैं, उसके अंदर ये टर्म्स एंड रेफरेंस करिए, हमें नहीं कोई दिक्कत है।
बिल्कुल, एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, समय कम है जी। नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं और संक्षेप में अपनी बात रखें।
जी मेरा नाम रोहित गौरव है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
रोहित गौरव जी मध्य प्रदेश से, जी स्वागत है, अपनी बात कहें आप।
जी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे गरीब देश में जहाँ सर 36% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, वहीं दूसरी ओर सर हमने आम देखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी जो कि चपरासी भी होता है तो वो करोड़ों का आसामी निकलता है। तो आम धारणा बन चुकी है कि कर्मचारी भ्रष्ट तरीकों से पैसा बना लेते हैं सर।
ऐसी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो धारणाएं हैं, मतलब पगार चाहिए अच्छी, काम नहीं करेंगे, और जो खासकर जो एक इम्प्रेशन बनता है सरकारी कर्मचारियों का वो ऐसा ही बनता है।
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं 13 लाख रेलवे में कर्मचारी है, हमें टारगेट दिया जाता है, 24 आवर्स रेलवे चलती है, हमें जो गाड़ी चलानी है उस इंजन को निकालना ही है, उसको तैयार करके मेंटेनेंस करके उसको निकालना ही है। और आप ये देखिए टारगेट की जो आउटपुट है रेलवे के अंदर, रेलवे का बजट सेपरेट
तो
पेश होता है।
ये तो मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समय मेरे पास बहुत कम है, मैं ओवरऑल एक संक्षेप में बात ये कह रहा था कि सरकारी कर्मचारियों की छवि हमेशा नकारात्मक क्यों होती है कि ये काम नहीं करते। आपके सेक्टर को छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपका जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप रेल चला रहे हैं उसमें
जी,
एक छवि तो है,
छवि है, काम की छवि है, बाकी सरकार
काम न करने की छवि है।
नो, ये सारी जगह नहीं है।
हाँ।
मैं कह रहा हूँ सारी सबसे बड़ी वर्ल्ड के अंदर इंडियन भारतीय रेलवे का चौथे नंबर पे स्थान है।
मैं सिर्फ रेलवे की बात ही नहीं कर रहा।
नहीं नहीं, केंद्रीय कर्मचारी जो दूसरे हैं उनका काम करने का जो तरीका, जो टारगेट दिया जाता है उसको जो
जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, आप उन लोगों के लिए भी बातें मतलब उठाएंगे? आप लोग तो जा रहे हैं भाई, 11 तारीख को आप लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए।
बिल्कुल उठाएंगे, आवाज़ उठा रहे हैं
जी,
पहले भी उठा रहे हैं
जी।
हम जो ऐसा नहीं है, रेलवे के अंदर जो ठेकेदार की लेबर काम करती है उसको हम बराबर जो है प्रेस करते हैं कि जो रेलवे के न्यूनतम कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलती है उनको भी वही तनख्वाह मिलनी चाहिए।
और इस दिशा में मतलब अगर मजदूर संगठन इस तरह की चीजें, क्योंकि आपके सेक्टर में भी बहुत सारे निजी कर्मचारी काम कर रहे हैं आज, तो उनके लिए भी अगर आप आवाज उठाते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, अपना संघर्ष करें, लेकिन उन लोगों के लिए भी संघर्ष हो जो कि वाकई वंचित हैं, जिनको कि कुछ नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीसी शर्मा जी, जो कि कार्यक्रम में आप आए। तमाम उन श्रोताओं का शुक्रिया, और जो लोग जिनके हम फोन नहीं ले पाए उनसे माफी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। नमस्कार।